मशीनी ज़बीहा जो है और एक हाथ का ज़बीहा, इन दोनों में उसूली तौर पर क्या फ़र्क है?
उसूल ये है कि किसी भी जानवर से जब आप गोश्त हासिल करना चाहते हैं,
जी
जो जायज़ जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जा सकता है, तो उसमें तीन शर्तें लाजिम, यानी ये क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त दी है, हम किसी की जान ले रहे हैं गोश्त खाने के लिए, तो इस वजह से तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये है कि उसके जिस्म को खून से पाक होना चाहिए,
ठीक है,
खून पीना जिसको दमे मस्फू कहते हैं ये हराम है,
हराम है, ठीक है।
आप हुरमत को पहले समझ लीजिए, खाने पीने में हुरमतों की बुनियाद क्या है, खाने पीने की में हुरमतों की जो उसूल है वो है कि तय्यबात हलाल हैं और खबाइस हराम है,
ठीक।
खबाइस को तय करने के उसूल क्या है, तीन है। आपकी तबीयत को शदीद गिन महसूस होती है उस चीज़ से,
ठीक,
जैसे बौलो बराज है आमतौर पर, तो ऐसा नहीं होता ना कि लोग पेशाब पीने लग जाए
सही है,
या इसी तरह पाखाना खाने लग जाए, ऐसा नहीं होता, तो शदीद गिन महसूस होती है उस चीज़,
ठीक है।
अच्छा, ये अशिया से भी हो सकती है, जानवरों से भी हो सकती है, बस में तो आदमी को उससे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि इसका असर उसकी तबीयत पर पड़ता है,
ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है दरिंदगी,
ठीक,
खून इसका बायस बनता है, दरिंदों का गोश्त यही चीज़ पैदा करता है, इस वजह से हुजूर ने एक उसूल के तौर पर समझाने के लिए लोगों को ये बताया कि चंगाल वाले परिंदे और कुचली वाले दरिंदे नहीं खाने चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या है, किसी जगह भी अगर दरिंदगी है वो पानी के जानवरों में है, जैसे शार्क मछली है, वो खुश्की के जानवरों में है, उन जानवरों से परहेज करना चाहिए। खून भी उसी जैल की चीज़ है,
ठीक
यानी
है।
आप देखें ना कि कोई आदमी गोश्त खा रहा हो तो तरद्दुद नहीं होता, प्याला अगर सामने रख के खून पीना शुरू कर दे तो आप महसूस करते हैं ना कि आप सूरत हाल तब्दील हो गई है कुछ, तो ये जो इंसान जो है उसकी नफ्सियात पर हमारे अमाल असरानंदाज होते हैं, खाना पीना भी, खुरानोश भी असरानंदाज होते हैं, दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि कोई अकीदे की नजासत उसमें पैदा हो जाए,
अच्छा,
जिसकी मिसाल ये है कि आपने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जानवर ज़बह कर लिया, तो ये प्रिंसिपल है, ये उसूल है,
ठीक है,
इनकी बुनियाद पर खाने पीने की चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई है।
ठीक है।
उस जैल में मैंने इसके खून हराम किया गया है तो खून निकलना चाहिए, यानी मौत जानवर की ऐसे वाक्य होनी चाहिए कि उसके जिस्म का पूरा खून निकल जाए,
ठीक है,
खून आप जिस तरीके से चाहे निकाल दें, ये खुद रिसालत में आप सरसन से पूछा गया तो आपने फरमाया, यानी ये पूछा गया कि बाद का तुम जंगल में होते हैं उस मौके पर इस तरह ज़बह नहीं कर सकते, आपने फरमाया किसी चीज़ से खून बहा दो, खून
अच्छा,
से जिस्म को पाक होना चाहिए। वो कोई मशीन कर देती है, वो कोई छुरी कर देती है, कोई भी चीज़ कर सकती है, दीन को तरीके से दिलचस्पी नहीं है, खून निकलना चाहिए। दूसरे ये कि उसकी जान लेने के अमल जब आप कर रहे हैं, हाँ वो मशीन करने जा रही है या आप करने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त अल्लाह का नाम बुलंद होना चाहिए, जिसको तस्मिया कहा जाता है, अल्लाह का नाम लेके, ये गोया इस अथॉरिटी का बयान है कि परवरदिगार तेरा इज़्ज़न है तो हम इस जानवर की जान ले रहे हैं,
ठीक
ये
है,
तेरा हुक्म ना होता, तेरा इज़्ज़न ना होता, तेरी इजाज़त ना होती तो हम ये जिसारत नहीं कर सकते थे, तो ये उस अथॉरिटी का बयान है, यानी अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह कहकर, अल्लाह अकबर कहकर आप किसी जानवर की जान लें। और तीसरा यह कि जो आदमी ज़बह करने लगा है उसको अल्लाह को मानने वाला, तौहीद को मानने वाला होना चाहिए, ये तीनों शरायत जब तक पूरी ना हो कोई जानवर से गोश्त खाने का आपको हक नहीं।
मछली के मामले में ना तज़किया होता है ना तस्मिया होता है। मछली हम जब लेते हैं बाज़ार से तो वो पहले से मुर्दा होती है, मरी हुई होती है, और उसे ज़िबा उस वक्त नहीं किया गया होता, उसके अंदर उसकी बॉडी में ही खून होता है। और दूसरी बात, वो जब आपने उसे उस पानी से निकाला है, उससे पानी से निकालते वक्त जब उसकी जान निकल रही थी तब भी आपने कोई अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो मार्केट में आ गई, आपने उसे ले लिया। इसमें तज़किया तस्मिया दोनों उसूल इसमें नहीं पेश नज़र रखे गए।
देखिए, तज़किया जब आप कर रहे होते हैं, जानवर को ज़बह कर रहे होते हैं,
जी,
उस वक्त आप उसकी जान लेने का अमल करते हैं, यानी आपकी तरफ से एक एग्रेशन होता है,
ठीक है,
एक जानवर को आप लिटाते हैं,
ठीक है,
और गोश्त हासिल करने के लिए गोया बेदर्दी के साथ छुरी चला देते हैं। इस मौके के ऊपर तो वहीं अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है, आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके तज़किए की ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो मछली है इसके अंदर खून तो थोड़ी सी मकदार में होता है लेकिन ये दमे मस्फू नहीं होता, ये फिर अल्लाह ताला ने रियायत फरमाई है कुरान मजीद में, जब ये कहा कि खून हराम है तो आगे वजाहत कर दी कि दमे मस्फू, यानी जो आपकी रगों में बहता हुआ खून है, ये चीज़ मछली में नहीं होती। आप जब मछली लेते हैं तो कुछ खून की आलाइशें तो होती हैं,
ठीक है,
लेकिन इस तरीके का دم مصفو اس کے اندر نہیں ہوتا.
ٹھیک
ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے تلی ہے, اس میں بھی خون ہوتا ہے ایک طرح سے. جگر کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو خون محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ دم مصفو نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک اصول کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ مشقت کا باعث نہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے یا اس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ تزکیہ تو کرنا ہی خون نکالنے کے لیے تھا, تو وہاں دم مصفو موجود نہیں ہے. اب آپ نے ایگریشن نہیں کیا اس میں, تو اس وجہ سے اب دو صورتیں ہو گئیں. ایک اچھے مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب جال ڈالے تو اللہ ہی کا نام لے کے ڈالے, کیونکہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن اب چونکہ یہاں آپ کی طرف سے کوئی اگریشن نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی جان لے لی گئی, ضرورت نہیں پڑی, تو اب یہ ضروری ہے کہ جب آپ اسے کھائیں یا بنانے لگیں تو تب اللہ کا نام لے رہے ہیں. اللہ کا نام تو لیا ہی جائے گا. یہ رعایت اس لیے کی اچھا گئی ہے کہ یہاں آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ عمل نہیں ہو رہا, یعنی اس طرح جان لینا جس میں آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہو کہ آپ چھری چلانے جا رہے ہیں تو خدا کا خوف کریں, یہ ضرورت یہاں نہیں ہے. تو آپ جال پھینکتے وقت اللہ کا نام لے لیں, آپ اس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لے لیں, آپ اس کو کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیں, تو یہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے اس کے.
رائٹ,
اللہ کا نام بھر لینا چاہیے, یہاں بھی
بھر لینا چاہیے. ٹھیک ہے.